नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और पीड़ित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गाँव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रतिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रता बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथ गंज से विधायक अखुजनाम को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नेहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंग्यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।